नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यानता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राज्यपालों का दो दिन का सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में संपन्न। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने की घटना में लापता लोगों की तलाश आज चौथे दिन भी जारी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि असम के मोरीगांव में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आकाशवाणी के संगीत समारोह का आज दूसरा दिन। वीणा वादन और गायन का प्रदर्शन करेंगे प्रसिद्ध कलाकार। अब समाचार विस्तार से। राज्यपालों का दो दिन का सम्मेलन कल राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन में एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की भावना से की गई व्यापक चर्चा के लिए राज्यपालों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्यपालों के कार्यालय के कामकाज को बेहतर बनाने और लोक कल्याण के लिए मिले सुझावों पर अमल किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यों के समावेशी और निरंतर विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है और सभी राज्यों को एक दूसरे की सर्वोत्तम शैली और अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अपने प्रयासों से सरकार ने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। उन्होंने राज्यपालों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी कार्यक्रमों का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले, ताकि समावेशी विकास का लक्ष्य सही मायने में हासिल किया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि राजभवनों का माहौल भारतीय जीवन शैली के अनुरूप होना चाहिए और राज्यपालों को आम लोगों के साथ जुड़ने के प्रयासों को तेज करना चाहिए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना राज्यपालों की जिम्मेदारी है। ऐसा करने से उनकी अपनी पहचान तो बनेगी ही, जनता का मार्गदर्शन भी होगा। श्री धनखड़ ने यह भी कहा कि राज्यपालों को अपने राज्य सरकार के साथ लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से अपील की कि वे राजभवनों में शासन का आदर्श मॉडल विकसित करें। उन्होंने कामकाज में तकनीक को अपनाने और डिजिटीकरण को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने शैक्षिक परिसरों को नशामुक्त बनाने के लिए इन संस्थानों के पूर्व विद्यार्थियों का सहयोग लेने की अपील की। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के सुझाव की चर्चा की और अनुरोध किया कि अन्य राज्यपाल भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, ताकि राजभवन परिसर रसायन मुक्त हो सके। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यपाल सम्मुख रिपोर्ट के संदर्भ में कहा कि राज्यपालों और राजभवनों के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रिपोर्ट की सभी महत्वपूर्ण बातों पर अमल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने की घटना में लापता लोगों की तलाश आज चौथे दिन भी जारी है। 44 लोग अब भी लापता है। इनमें से 36 लापता लोग शिमला जिले के रामपुर के समेश इलाके के हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दल लाइव डिटेक्टर उपकरणों के साथ लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने तलाश दल के साथ स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के लिए तैनात बल में और लोग शामिल किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति और खाद्य तथा आपूर्ति विभाग को प्रभावित स्थानों पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच कल रात जनजातीय जिले माहौल स्पीति में बादल फटने की घटना के कारण दोचा शुनकला मार्ग पर सीमा सड़क संगठन के दो पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस कारण दारचा शुनकला जांसकर मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में आज सुबह एक मंदिर की दीवार गिर जाने से 9 बच्चों की मृत्यु हो गई है और कई घायल हो गए। शाहपुर में हरदोल बाबा मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान यह दुर्घटना घटी। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बचाव कार्य किया गया। सागर के कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि कुछ बच्चे घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल में मलबा हटा लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दुर्घटना में मारे गए बच्चों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ के मनीमाजरा में 2400 घंटे जलापूर्ति की एक प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने कहा कि इस परियोजना से मनीमाजरा के लगभग 1,00,000 लोगों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर लगभग 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। श्री शाह ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य 2400 घंटे तेज जलापूर्ति के माध्यम से पानी को बर्बाद होने से बचाना है। इसका अन्य उद्देश्य पानी के लीकेज में कमी, स्मार्ट मीटरिंग, भूजल पर सीमित निर्भरता और ऊर्जा खपत की निगरानी के माध्यम से जल संसाधन में वृद्धि करना है। इस परियोजना की कुल लागत 160 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर में गंदरबल में बादल फटने से बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण आज श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। इससे वाहनों का आवाजाही बंद हो गई है। राजमार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बादल फटने से चेरवान पदवबल क्षेत्र में कई मकानों पर भी इसका असर पड़ा है। अंतिम समाचार मिलने तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। बचाव दल चट्टाने हटाने के लिए सवेरे से अथक प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि असम के मोरीगांव में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इस इकाई पर 27,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार तथा 11,000 से 13,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि इस संयंत्र से प्रतिदिन 4,83,00,000 चिप का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र में बनने वाली चिप का उपयोग बैटरी चालित वाहनों और संचार तथा नेटवर्क ढांचे में किया जाएगा। इस वर्ष 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बात कही गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह स्थिति दक्षिण पश्चिम राजस्थान और इसके आसपास कम दबाव के क्षेत्र के कारण बनी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों कोंकण और गोवा में भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के हिमालय से लगे क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी इस महीने की 10 तारीख तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। उधर तटीय कर्नाटक में आज तथा केरल माहे और तमिलनाडु में कल तक भारी वर्षा की संभावना है। इस सप्ताह देश के अधिकतर हिस्सों में वर्षा और बिजली गिरने का अनुमान है। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के बाद सेना आज लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य में जुटी है। कल 4 शव बरामद किए गए, जिनमें से 3 शव नीलम्बर में चलियार नदी से निकाले गए। इसी नदी से 13 छठ विक्षिप्त अंग भी बरामद किए गए। सशस्त्र बलों के 1,260 से अधिक कर्मी बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं। इस बीच मंत्रिमंडल की उप समिति ने बचाव कार्य को देखते हुए लोगों से डार्क टूरिज्म से बचने की अपील की है। डार्क टूरिज्म आपदाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा को कहा जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 137 काउंसलर तैनात किए हैं। मुंडकई और परलमाला में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलियार नदी से सटे वन क्षेत्रों और नदी के किनारे शवों की तलाश के लिए कर्मी तैनात किए गए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने असम के मोरीगांव जिले के जागीरोड क्षेत्र में अपनी चिप निर्माण और परीक्षण इकाई का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और टाटा सन्स के प्रमुख एम चंद्रशेखरन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम इस सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापित होने से दुनिया भर के विद्युत कलपुर्जों के निर्माण में सक्षम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन राज्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के लिए स्वर्ण युग आने की संभावना है। टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इसके द्वारा विद्युत वाहनों, मोबाइल फोन और विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों के लिए प्रतिदिन 4,80,00,000 चिप का निर्माण किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में 2 दिन के संगीत सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। कल इस सम्मेलन के पहले दिन प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने धुन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंडित जयत्रित मेवुगणी ने बैरीटोन पर प्रस्तुति दी। आज इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट और उनके सुपुत्र पंडित सलील भट्ट, गायक पंडित साजन मिश्रा और सुरांश मिश्रा अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन दिल्ली के अतिरिक्त हैदराबाद, पटना, जम्मू, शिलांग, इम्फाल, कटक, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई और रांची में भी आयोजित किए जा रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की विरासत को पोषित करना और सांस्कृतिक विविधता को मजबूत करना रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव अंगों को प्रत्यारोपण के लिए सही समय पर अस्पताल पहुंचाने के प्रायोजन से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि इससे गुणवत्तापूर्ण तरीके से अंग प्रत्यारोपण हो सकेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।